अल्लाह ने मुझे और आपको क्यों पैदा किया? सवाल पैदा होता है कि मौत की सख्तियों से हमें क्यों गुजारना है? इसकी वजह यह है कि दुनिया में लाने का मकसद ना तो माल कमाना और ना दौलत कमाना और ना हमें कैरियर बनाना, बड़े बड़े घर बनाना नहीं है, बल्कि क्या है कि इस दुनिया में रहते हुए अपने रब को राजी कर लो। सूरत शुरा की आयत नंबर 88 और 89 में आता है, यौम ला यन्फउ मालुम वला बनून, वो दिन जिस दिन ना तो माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे, इल्ला मन अतल्लाह, मगर वो जो आया अल्लाह के पास बिकल्बिन सलीम, सलामत दिल लेकर। यानी कामयाब वो है जो अल्लाह के पास सलामत दिल लेकर है। किस चीज से सलामत? दुनिया की मोहब्बतों से सलामत। इस दुनिया के गमों में नहीं जीता रहा, छोटी छोटी बात पे उसका दिल ही नहीं टूटता रहा। वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। इस दुनिया में मेरा और आपका इम्तिहान ये है कि वो कहते हैं ना कि गुजरा हो दुनिया के बाजार से, राह गुजर है, यानी राह से गुजरता रहा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। कभी आपको किसी जगह से गुजरना पड़े, इधर भी दुकानें उधर भी दुकानें, तो आप सीधा नाक किसी चले जाते हैं, ना इस दुकान में देखते हैं ना उधर देखते हैं, वही बचेगा। और अगर आप कहते जरा देखो इधर क्या है, ये सेल पे है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो पहली बात ये है कि पहुंच नहीं सकेंगे जहां जा रहे थे, और दूसरी बात है कि जेब भी खाली होगी, और तीसरी बात है हाथ भारी हो जाएंगे। जो सफर खाली हाथ चल रहा था सहूलत से, अब वो सफर मुश्किल होगा और अगला वक्त जो है वो मुश्किल से गुजरेगा। इस दुनिया में भी यही हो रहा है। जिन्होंने जिंदगी को लिया है बिल्कुल थोड़े से लो प्रोफाइल पे, उनकी मौत बड़ी खूबसूरत होगी। इमेजिन कीजिए एयरपोर्ट को, कुछ लोग हैं जिनके पास तीन तीन चार चार लगेज हैं और एक्स्ट्रा भी लिया हुआ है, उनको भी लाइनों में लगना पड़ेगा और उनकी लाइनें बड़ी लंबी होंगी। और एक वो है जो हैंड कैरी के साथ जा रहा है, किसका सफर आसान होता है? हैंड कैरी वाले का। मौत के वक्त वो शख्स जिसने अपनी दुनिया को हल्का रखा वो खुशियां मनाएगा। अबू जर गफारी का नाम आपने कई बार सुना होगा। कोई उनके पास आता है, कहता है अबू जर आपके घर में ये भी नहीं दिख रहा वो भी नहीं दिख रहा, आपने अपने घर में सामान नहीं रखा हुआ? कहने लगे वो दूसरे घर भेज दिया। वो शख्स समझा कि शायद इनका एक से ज्यादा घर है, वहां सामान भेज दिया। कहा अच्छा कुछ इधर भी तो रख लेते। तो कहा कि इधर का मालिक हमें रहने ही नहीं देता तो सामान क्यों रखें। उसकी मौत आसान है। जिसका दिल इस दुनिया में नहीं डूबा हुआ उसकी मौत खूबसूरत है, उसको मरना मुश्किल नहीं लगता। जैसे मुझे और आपको अगर इस मुल्क से मूव होना पड़े तो किसको मुश्किल लगेगा और किसको आसान लगेगा? जिसने यहां लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू कर लिया, इतनी दुनिया इतनी दुनिया के बस उसी को लेके चलते रहे, उसके लिए तो मुश्किल है। और जिसने बस कूते ला यमूत और जरूरत पे अपने आप को रखा, उसके लिए मूविंग बहुत आसान है। ठीक है, तो लिहाजा इस चीज को जहन में रखिएगा। मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिंदगी से मौत की तरफ का सफर खुशगवार गुजरेगा या मुश्किल गुजरेगा। इस दुनिया में आते हुए इंसान खाली हाथ आता है, जब जाता है तो हाथ में क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता। सिकंदर आजम के बारे में गालिबन ये कौल मारूफ है कि जब मैं मरने लगूं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख लें कि सारी दुनिया को फतह करने वाला शख्स इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। जी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो फरमाया करते थे, मेरा इस दुनिया से क्या काम? मेरी और दुनिया की मिसाल तो बस ऐसी है जैसे कोई सवार अपनी सवारी से उतरकर किसी पेड़ की छांव में घड़ी दो घड़ी आराम करे, फिर उठे और चल दे। ये तिर्मिजी की रिवायत है 2377 नंबर की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स को कहा करते थे, ये दुनिया उबूर करने की है, दिल लगा लेने की नहीं। उबूर समझते हैं ना, जस्ट टू पास, दरिया उबूर कर लिया, आबर या बिरुसे। کہتے ہیں کہ ادھر نہیں، ادھر سے صرف گزرنا ہے، رہنا نہیں. کہتے ہیں کون ہے جو سمندر کی کسی موج پر گھر بنا لے؟ سوچیے سمندروں پہ جو گھر بنتے ہیں موجوں پہ بن سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بنائے گا. تو فرمایا یہ دنیا بھی ویسی ہے، اس کو ٹھہرنے کی جگہ کبھی مت سمجھنا. یہ جگہ رہنے کی نہیں، حقیقت یہ ہے یہ دنیا جا رہی ہے. حضرت علی کا ایک کال نوٹ کریے گا، کہتے ہیں کہ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. کچھ لوگ دنیا کا مال ہیں اور کچھ آخرت کا. دیکھو ان میں رہو جو آخرت کا مال ہے، اور ان میں مت رہنا جو اسی دنیا کا مال ہے. بات یہ ہے کہ آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں. کل حساب ہی حساب ہے، عمل کی کوئی گنجائش نہیں. بات واضح؟ آپ یہ سارے کوٹس لکھیے اور سوچئے، پھر موت کو پوچھئے کہ موت کیسی چیز ہے، تو انشاءاللہ آپ کا نقطہ نظر درست ہوگا. ایک عقل مند کا کال ہے، مجھے تو اس شخص پر تعجب ہے کہ جس سے دنیا رخصت ہو رہی ہے اور آخرت اس کی جانب بڑھتی جا رہی ہے، مگر یہ ہے کہ جانے والی کی خاطر میں لگا ہے اور آنے والی سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے. کیا مجھے اور آپ کو یقین آتا ہے اس بات کا؟ چلیے اپنی موت کی بات کرتے ہیں. کیا مجھے اپنی موت کا یقین آتا ہے؟ لکھئے ذرا اپنے نوٹس پہ، اپنے خوبصورت ہاتھوں کے ساتھ لکھئے. کیا میں بھی مروں گی؟ میں کب مروں گی؟ وہ کون سا موقع ہوگا؟ گرمیاں ہوں گی کہ سردیاں ہوں گی؟ نیند کی حالت میں مروں گی یا جاگتے کی حالت میں مروں گی؟ سفر میں ہوں گی کہ حضر میں ہوں گی؟ اللہ کی رضا میں ہوں گی کہ ناراضگی میں ہوں گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تین غم لگے ہوئے تھے نا، اس میں ایک غم یہی تھا کہ آج تو نیکیاں کر رہا ہوں، پتہ نہیں موت کے وقت کیا کر رہا ہوں گا. اگر برا کام کیا اور اس پہ موت آ گئی تو میرا انجام برا ہو گیا. یاد رکھیے موت کے وقت انسان کو تین غم لاحق ہوتے ہیں، لکھ لیجئے. تین صدمے ہیں موت کے. سب سے پہلے تو نزع، سکرات. موت کی سختیاں اپنی جگہ ہیں، مت سوچئے کہ یہ موت بڑی نرم چیز ہے. ڈلیوری سے سمجھ لیں، بچے کا دنیا میں آنا ہے نا مشکل. اگر ماں تکلیف سہتی ہے تو بچہ بھی تو سہتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد، مشکل میں پیدا کیا، تنگیوں میں پیدا کیا. تو سب سے پہلی تو موت کی اپنی جان کنی کی کیفیت بڑی سخت ہے، اور اس کے بارے میں احادیث کو پڑھ کے دیکھیں تو یقین کریں کہ آنکھیں کھلتی ہیں. آپ کو بعد میں ایک پریزنٹیشن دکھائیں گے جس میں ساری چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اس کا لنک بھی دے دیں گے آپ کو کہ آپ بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن بس ابھی اتنا سمجھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ کعب احیار ہیں ان سے پوچھا تھا کہ سناؤ موت کیا ہوتی ہے. صحابہ کو غم لگا ہوا تھا موت کا. اب تو ہنس کے ٹال دیتے ہیں نا، آئے گی تو دیکھیں گے. لیکن انہوں نے کہا سناؤ موت کیا ہوتی ہے. کہنے لگے کانٹو بھری شاخ ہو، بہت اس پہ کانٹے تھون لگے ہوئے، پھر اس کو کسی بندے کے جسم میں داخل کریں، امیجن کریں، اور اس کو دوسرے راستے سے باہر نکالیں تو کیا ہوگا؟ کہا ادھڑ ادھڑ جائے گی. کہا یہی موت ہے. والنازیات غرقا والناشطات نشتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈوب ڈوب کر جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم، جو جان کے بند کھولتے ہیں پھر اس روح کو لے کر تیرتے ہیں. یعنی کافر کی موت، فاجر کی موت، والنازیات غرقا. مشکل سے جب موت آتی ہے تو کافر کی روح جسم میں چھپتی ہے، کیونکہ پتہ ہے نا کام نہیں کیا ہوا. موت کی حقیقت ہے یہ مان لیجئے. اور یاد رکھیے جسم کے ہر عضو کو الگ سے موت آئے گی، زبان کو بھی موت آتی ہے. آپ کو پتہ یہ بات، عقل ہے نا جو سوچنے کی کیفیت ہے. تو پہلا غم کیا ہے؟ موت کا، اپنا جان کنی کا وقت، تکلیف کا. کہتے ہیں کہ ایک پاؤں زمین پہ تو ایک آسمان پہ، تو یہ موت کا وقت ہوتا ہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کنی کی کیفیت دیکھنے کے بعد، اب میں اگر کسی کی جان آسانی سے نکلتی دیکھوں تو तो मैं कोई खुश नहीं होती, मेरे दिल में कोई रश्क नहीं आता, है कितने आराम से जान निकल गई। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लम की जान कनी की कैफियत बहुत सख्त थी। हजरत फातिमा के अपने अशार भी पढ़े होंगे, किताबों में आते हैं, अपने बाप की मौत का गम बयान करती हैं कि इतनी तकलीफ है, पहाड़ों पे पड़ती तो न जाने क्या था। अब यहाँ आपके एक सवाल का जवाब साथ साथ देती जाऊं जो जहन में उठेगा। हम अमूमन क्या सोचते हैं, नेक लोगों की जान बड़े आराम से निकल गई और नौजुबिल्ला गुनाहगारों की बड़ी मुश्किल से निकलती है ना, ये हमारा तसव्वुर, ये बातिल है। किसी की जान आराम से निकल जाए या मुश्किल से निकले, इससे उसके नेक और बद होने का कोई ताल्लुक नहीं है। वही बात कि बच्चा बाद में वली बन जाए या बाद में चोर बने, माँ को तकलीफ एक ही जितनी होती है उसकी डिलीवरी की। तो फिर नेक लोगों को तकलीफ क्यों होती है? हदीस में आता है कि एक शख्स जिसके लिए अल्लाह ताला ने आखरत का आला मुकाम रखा होता है, आप इमेजिन करें नबी सल्लम को, आपने फरमाया कि जन्नत का आला तरीन मुकाम वसीला है और वो अल्लाह सिर्फ एक बंदे को देगा और मेरा गुमान है कि वो मैं हूं। अब अल्लाह ने लिख दिया जाके मोहम्मद सल्लम को वसीला देना है, अब वो जगह इतनी महंगी, इतनी कह लीजिए कीमती है, अब अल्लाह ताला अदल भी है और अल हाकिम भी है। अल्लाह चाहे तो ऐसे ही दे दे, खुश होके दे दे नबी सल्लम से, या जिसको इससे भी कम पे ले आइए अपने ऊपर ले लें, अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत में उसके नाम पे जन्नतुल फिरदौस लिख दे। और ऐसा हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला को किसी बंदे से मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला उसके नसीब में कोई जन्नत का आला मुकाम लिख देता है। लिख सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। अब अल्लाह ताला जब उस बंदे की तरफ देखते हैं तो उसके अमल वो नहीं है, इतने नहीं है कि जन्नतुल फिरदौस मिले, ठीक है इतने हैं के जन्नत नईम में चला गया, मावा में चला गया और इसी तरह जन्नत के दूसरे मुकाम है। अब अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या कहते हैं कि तुम इस पर जाकर कोई मुसीबत डालो और उस मुसीबत में मैं इसको सब्र की तौफीक दूंगा और उस सब्र के बदले में इसको वो जन्नतुल फिरदौस मिल जाएगी। ये अल्लाह का असूल है। नेक बंदे को जो मौत के वक्त तकलीफ आती है, ये इसके रफा दरजात के लिए होती है। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने आला तरीन मुकाम देना था, तो आपको जिंदगी भर की रियासतों और मेहनतों के बावजूद भी मौत की सख्ती में आम लोगों से ज्यादा डाला गया। इसके बरक्स अचानक मौत, लगता है उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है, जैसे आप सुनते हैं कि कोई नींद में सोया और उसी में फौत हो गया, ऐसी मौतें होती है ना। पहली बात याद रखिए, मेरे और आपके देखने में किसी को तकलीफ हो रही है और कोई अचानक फौत हो गया, ये रियलिटी नहीं है। इवन जिसको हम कहते हैं नींद में सो गया, अब मैं और आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन असल में उसकी रूह के साथ क्या हुआ, अल्लाह ने उस दिवस किसी को बिजली का झटका लगा, वो इतना शदीद था कि हो सकता है उसी से उसके सारे जिस्म के बाल झड़ गए हो, ठीक है। तो नेक बंदे को जब तकलीफ मौत की आती है तो ये अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से रहमत होती है। क्यों? हदीस में आता है कि अल्लाह ताला मोमिन को इस दुनिया से पाक किए बगैर लेके नहीं जाता। हम सब इंसान हैं, हम जितनी भी नेकियां कर लें इसके बावजूद भी हम गुनाहगार हैं। जब हम कोई नेकी नहीं भी कर रहे होते ना, बल्कि ये कह लीजिए कि जब हम कोई गुनाह नहीं भी कर रहे होते, उस वक्त भी हम गुनाह कर रहे होते हैं। क्या कि उस वक्त कोई और नेकी कर सकते थे, वो नेकी बात वैसे एक नेकी कर रहे हैं आप, मिसाल है कि आप इस वक्त इधर सुन रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत, बड़े शौक और बड़े रुजू के साथ नेकी है ना, लेकिन हो सकता है आप इस वक्त कोई और भी एक नेकी कर सकते हैं। अब ये हर एक को अल्लाह ने खुद ही समझ दी होगी ना, मेरी नेकी भी कुछ हो सकती है, आपकी भी कुछ हो सकती है, हो सकता है आप दूसरे साथी के बहुत साथ जुड़ के बैठे हुए, आप थोड़ा सा अलग हो सकते थे, मिसाल दे रही हूँ, आप तो ऐसे नहीं है इस वक्त, लेकिन सिर्फ कहने की बात है। जिक्र साथ कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, नहीं किया, अपनी तवज्जो मजीद रख सकते हैं, नहीं की। तो जिस वक्त हम एक नेकी कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भी ये जुर्म कर रहे होते हैं कि दो नेकियां कर सकते थे लेकिन एक ही है, खुद आ गए साथ एक और को भी ला सकते थे। तो लिहाजा अगर किसी को तकलीफ आए तो आप और मैं कभी फतवे ना दें, कभी किसी के बारे में जजमेंटल ना हो। इधर मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने बुक भी पढ़ी है, इकबाल किलानी साहब की बुक से तो आप लोग वाकिफ हैं, तफहीमुस सुन्ना की बुक है, तो उनकी बुक है कब्र का बयान। उसमें मोमिन और काफिर की मौत के वक्त जो कैफियत है ना, उसके ऊपर स्टेप्स हैं, 10 एजाजात जो मोमिन को मिलते हैं और काफिर को। पहले मैंने सोचा आज भी आपसे शेयर कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं वो तो पहले से मौजूद है, तो आप लोग उस बुक की रिकॉर्डिंग कभी भी सुने तो उसमें मौजूद है। और इसी तरह से 30वें पारे की तफसीर में भी मैंने उसको 20 साल भी कोट किया है, ये जो लंदन कोर्स है, और कहीं ना कहीं सवीलुल जन्ना में भी है। खुद भी बुक में से पढ़ लें, बहुत सिंपल है, सुने बगैर खाली पढ़ के भी समझ आएंगे कि मोमिन को पसीना आता है, मोमिन को दूर तक फरिश्ते नजर आते हैं, मोमिन के चेहरे पे इत्मीनान होता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जी इला रब्बिकी राधियतुम मर्दिया, ये पुकार अल्लाह सुना देता है, ये अल्लाह की खुशी, अल्लाह तला की बात है। और काफिर के साथ मामला बड़ा सख्त है। हदीस बहुत मारूफ है कि जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके पास फरिश्ते आके बैठ जाते हैं, हदे निगाह तक उसको फरिश्ते दिखते हैं, सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे। बाद फरिश्ते आपस में बातें कर रहे होते हैं, इसने जो खाना था खा लिया, अभी भी जिंदा है। दूसरा कहता है, हाँ मैं तो इसके कदम लिखने पे मुकर्रर था, जितने कदम इसने उठाने थे वो उठा लिए हैं, फिर भी जिंदा है। तीसरा इसी तरह कुछ और कहता है, चौथा जो वो कुछ और कहता है, इसके अमाल चले गए। इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं, और मलकुल मौत इंसान की रूह को कैसे निकालते हैं, सारे जिस्म के हर उस में से जान अलग से निकलती है। मैं इस पे अक्सर एक मिसाल देती हूँ, आपको भी दे दूँ, बहुत ही बात आसान होगी। कभी वैक्स करवाइए आपने, जितनी जगह पे वो पट्टी लगती है ना वैक्स की, उतनी जगह से बाल खिंचते हैं ना, आप कह लें हर बाल की रूह खिंचती है। इसके बरक्स आप सेफ्टी रेजर से काटें तो कुछ भी नहीं होता, बस मौत ही है। अब आप उसी से सोचे कि एक पट्टी वैक्स की लगती है तो उससे जिस्म के मोटे मोटे बाल उतरते हैं तो इतनी दर्द है, तो जब जिस्म में मिलियंस ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल में से अलग से जान निकलेगी तो कितनी तकलीफ होगी। रिवायत में आता है कि बरहना बदन पे, नेकेड बॉडी पे 360 तलवारें एक साथ चला दी जाए, इतनी तकलीफ मौत के वक्त होती है। और इसी तरह एक रिवायत में आता है कि एक शख्स मरा, 500 साल बाद उसको जिंदा किया गया, कहा सुनाओ, तो कहता है आज भी मौत का जायका मुंह में है। बास कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा जीने उठने तक मौत का टेस्ट उसको जाता नहीं है, इतनी तकलीफ होती है। अल्लाह जिसको तकलीफ में डाले जिसको ना डाले, मसला ये नहीं है, मसला आगे का है। तो अभी तीन चीजों में से एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मौत के वक्त के मसाइल में एक मसला मौत की तकलीफ है। दूसरी चीज जो मौत के वक्त इंसान को लाहक होती है ना, वो बजाते खुद मलकुल मौत को देखना। हम दुनिया में जरा ऊंचे चौड़े लंबे जिस्म के किसी इंसान को देख लें तो घबरा जाते हैं, कहीं खे और वह बहुत ऊंचा लंबा शख्स था और वो इंसान था, लेकिन फरिश्तों को देखना और फरिश्तों में भी मलकुल मौत को देखना। और रिवायात में आता है कि मौत के फरिश्ते नेक शख्स को खूबसूरती की सूरत में दिखते हैं और बद को बड़े ही करीह दिखते हैं। तकलीफ होती है उसको, उसको उस वक्त नजर आ रहे होते हैं और वो कैफियत उसको उसी वक्त सुझा देती है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो किधर जाने वाला है। तो मलकुल मौत का सामना करना बहुत बड़ी घाटी है, हम सब इसे गुजरने वाले हैं। इमेजिन करें, चाहे सारे हमारे घर वाले हमारे साथ हो, लेकिन जब मौत आएगी ना, उस वक्त हम बिल्कुल तन्हा होंगे, कोई हमारी उस वक्त मदद नहीं करेगा। बल्कि आपको पता है कि अकल को भी मौत आती है, जिसको हम कहते हैं ना अकल। जैसे आप देखिए गर्मी लगती है तो हम कहते हैं ना गर्मी लग रही है, दर्द महसूस होता है तो हम कहते हैं ना हाय यहां दर्द है। इंसान की आदत है कि जब उसको कोई तकलीफ होती है ना तो उसके साथ वो उसके इजहार जरूर करता है। कभी आपने सुना कि किसी ने मौत की सख्तियों को पेश किया किसी पे? बात वाज़े, एक कैफियत ऐसी आती है मरने वाले पे कि जब वो मर रहा होता है ना तो उसकी अकल फौत हो जाती है, तो वो एहसास बताने का खत्म हो जाता है, फिर जुबान को मौत आती है। इंसान डिलीवरी पेन बता सकता है, दिल का दर्द हो वो बता सकता है, आज तक किसी ने निजा की सख्ती नहीं बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि उस वक्त जुबान को मौत आ चुकी होती है। मौत ने हमारे जिस्म के एक एक कोज से अपना हक लेना है, हर हिस्से को मौत आनी है। और हदीस में आता है कि सबसे पहले पाँव से जान जाती है, पाँव ठंडे होते हैं, फिर टांगे, और उसके बाद फिर होते होते अगले हिस्से से जिस्म के इंसान के रूह निकलती है। और जब वो रूह निकलती है तो उस वक्त उसको तकलीफ होती है, और ये सारा काम मलकुल मौत चंद फरिश्तों की मदद से करते हैं। लेकिन जब रूह बिल्कुल गले के पास पहुंच जाती है तो हाथ बढ़ाकर खींच लेते हैं, और फिर उस वक्त उसको यही कहा जा रहा होता कि चल, नेक शख्स था तो कहा जाता चल अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तुझसे राजी है और वो तुझसे राजी है, और इस हाल में कि अगर वो नाराज है तो कहते हैं चल अब गर्म पानियों की तरफ और रब की नाराजगी की तरफ। और ये जो जान निकलने का मंजर है ना, इसको अगर आपने सूरत अल कयामा की आयतों में सुना हो कि जिसमें ऐसे लगता है कि किसी की जान निकल रही है, मैं भी आपको इसकी तिलावत सुनवाती हूँ, आप बिल्कुल सारी चीजों से बेनियाज करके सोचें कि जब जान निकलती है, जब रूह निकलती है, तो उस वक्त क्या हालात होते हैं इंसान के साथ, और इस सब को अपने ऊपर लेना हमने, क्योंकि जब मेरी जान निकलेगी तो मेरे साथ क्या होगा। असल ये बात है, हम सारी जिंदगी दूसरों का हिसाब लेते रहते हैं, वो ये करते हैं, उनकी नीयतें खराब हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, सारी जिंदगी बस हम यही सोच सोच के दूसरों को भी जज करते रहते हैं, जबकि सबसे ज्यादा फिक्र इंसान को अपनी करनी है। मौत के वक्त इंसान को तीन गम होते हैं, पहला गम क्या है सब बोल दें, सकरात, मौत की सख्तियां, तकलीफ है, दूसरा मलकुल मौत, उसकी वहशत, और तीसरा मेरा मुकाम क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, जन्नत या जहन्नम। हम अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि हमें इन तीनों गमों से बेनियाज कर दे। आइए तिलावत सुनते हैं।
ख्याल करेंगे कि उन पर मुसीबत वाकई होने को है, देखो जब जान गले तक पहुंच जाए, और लोग कहने लगे उस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है, और जहां बालक ने समझा कि अब सबसे जुदाई है, और पिंडली से पिंडली निपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ चलना है, तो उस नासिबत अंदेश ने ना तो कलाम खुदा की तस्दीक की न नमाज पढ़ी, बल्कि झुठलाया और मुंह फेर दिया, फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया, अफसोस है तुझ पर फिर अफसोस है, फिर अफसोस है तुझ पर फिर अफसोस है, क्या इंसान ख्याल करता है कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा, क्या वो मनी का जो रहम में डाली जाती है खतरा न था, फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसको बनाया, फिर उसके आजा को दुरुस्त किया, फिर उसकी दो किस्में बनाई, एक मर्द और एक औरत, क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं कि मुर्दों को जिरा उठाए।
क्या महसूस किया आपने, बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि हम अपनी आंखों से किसी को मरता हुआ देख रहे हैं। आप देखिए कि जब हम कुरान को समझ के पढ़ते हैं ना, तो कोई चीज़ हमसे छुपी भी नहीं रहती। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब एक इंसान की दुनिया से रुखसती का वक्त होता है, कल्ला इज़ा बलगत तराकीश, फिर जब पहुंच जाती है रूह यहाँ, ये जो तराकी है ना, तरकवा से, ये जो गले का वो हिस्सा जहाँ से रगे गर्दन कटती है, वकील अमन राक, कहा जाता है आज किधर है कोई झाड़ फूंक करने वाला। दुनिया में हम कहते हैं हम डॉक्टर्स को बुला लेंगे, हम चेकअप करवा लेंगे, किधर है, वजन न अन्नहुल फिराक, और उसने ये गुमान कर लिया कि अब जुदाई का वक्त है, वह तफत साक बिसाक, और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी, इला रब्बी का यौम इज़िनिल मसाक, और अपने रब की तरफ अब रवानगी का वक्त है। تو موت رب کی طرف روانگی کا وقت ہے. اگر اللہ کا حق ادا کیا ہوگا تو موت تحفہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح موت کے وقت اچھلتی ہوئی خوشیاں مناتی ہوئی جسم سے نکلتی ہے. اور آپ نے اس کی مثال کیسے دی کہ اگر خوشبو کی شیشی کھلی رہ جائے تم کیا دیکھو گے کہ کچھ عرصے کے بعد بوتل خالی پڑی ہوگی اور خوشبو اڑ جائے گی. کہا موت کے وقت مومن کا جسم ادھر ہوتا ہے اور اس کی روح پر چلی جاتی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو اس کو اتنا خوبصورت منظر دکھایا جاتا ہے. یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جب ایک شخص نیک ہوتا ہے تو فوت ہوتا ہے نا, تو اس کے سامنے اس کا انجام کر دیا جاتا ہے کہ اب یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, یہ جانا ہے, تو اسی میں کھو کر اس کو موت کی سختی محسوس ہی نہیں ہوتی. موت کی مشکل سختی ہونا اور بات ہے, یہ تو حقیقت ہے, یہ تو ہوگی, لیکن اس کو محسوس ہونا یا محسوس کرنا کرانا یہ دوسری بات ہے. تو تکلیف تکلیف ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. اس کے برعکس کافر جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا برا انجام رکھا جاتا ہے, اور اس وقت پھر وہ اس تکلیف کی وجہ سے کیا کرتا ہے, اور دکھی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ موت کی سختی تو اتنی بڑی نہیں ہے, اس کے بعد بڑی تکلیف ہے. جیسے بعض لوگ آپریشن کرواتے ہیں اور ان کو خوف ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد اب اور کئی مشکلیں ہو جائیں گی, تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس زندگی میں کیا کیا ہے. اور جب ہم اس زندگی میں اپنے اس وقت کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو ہمیں مشکل بھی ہوئی لیکن ہم اس بات پہ مطمئن ہوں گے کہ ہم اپنے رب کو ملنے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جو اللہ سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا, دیکھیں وہ سچ بولتے تھے نا, مرنا تو کوئی نہیں چاہتا, تو پھر اللہ سے ملاقات کیا ہوئی؟ تو آپ نے فرمائی سے یہ مراد نہیں کہ کوئی مرنا چاہے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ موت کے بعد کے لیے تیاری کرے. تو اس سیشن میں جو بات ہم کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے, موت کی تیاری کرنی ہے. موت کا لفظ قرآن پاک میں 165 ٹائم یوز ہوا ہے مختلف طرح سے, کبھی یمیتکم, کبھی موت, کبھی امواتا, کبھی موتا, اور 143 آیتوں میں آیا ہے. موت ایک حقیقت ہے, کافر مرنا نہیں چاہتا. سورۃ بقرہ 94 میں آتا ہے قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس آخرت میں ایک خالص گھر ہے تو پھر موت کی تمنا کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, لیکن وہ نہیں کریں گے. کافر کیا چاہتا ہے, جیو تم ہزاروں سال اور ہر سال کے ہوں دن ہزار, پھر کیا ہوگا, پھر موت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس ملک الموت آیا کہنے لگے میں تو نہیں ابھی مروں گا, کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ پوچھ کے ان کی روح نکالتے ہیں. کہا کہ مرنا تو ہے موسیٰ, کہا میں نے نہیں ابھی مرنا, میں نہیں مرنا چاہتا. کہا اچھا کیا کریں, ایک بیل لایا گیا, آکس ہوتا ہے نا, میل گائے جو ہوتی ہے. کہا کہ موسیٰ اس کے جسم پہ ہاتھ رکھیں, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں گے نا اتنے سال آپ کی موت ڈیلے کر دیں گے. کہا پھر کیا ہوگا, کہا پھر مرنا تو ہے. کہا پھر تب مرنا ہے تو پھر اب بھی مر جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے اسٹرانگ تھے جب ملک الموت ان کی جان لینے کے لیے انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا, اس کی آنکھ اٹھ گئی, وہ روتا ہوا اللہ کے پاس گیا, اللہ تیرا کتنا زبردست نبی ہے کہ جان ہی نہیں نکال رہا. تو اس کے بعد یہ کچھ آپشن پیش کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دی, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روحوں کی صورت میں ان کی اولادیں دکھائیں تو کہا اللہ تعالیٰ یہ میرا کون سا بچہ, بڑی خوبصورت چمکتی ہوئی روح ہے. کہا یہ داؤد ہے. حضرت داؤد بڑے خوبصورت تھے, اور جیسا انسان دنیا میں ہوتا ہے اس کی روحوں کی کیفیت میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. کہا اس کی عمر کتنی رکھی ہے, اب الفاظ کے فرق سے کئی چیزیں آتی ہیں. کہا اس کی عمر 60 سال ہے. کہا یہ تو بڑی تھوڑی ہے. کہا اچھا کیا ہو, کہا اس کی تو کم از کم 100 ہونی چاہیے. کہا پھر آپ اپنی عمر میں سے دے دیں. اگر 70 کہا تھا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرے 30 لے لو, 60 کہا تھا تو کہا اچھا 40 سال میرے لے لو. جب حضرت آدم کی اپنی عمر مبارک روایت میں آتا ہے کہ 960 سال ہوئی تو فرشتہ آ گیا کہ آپ کی موت کا وقت ہے. کہا نہیں میری تو 1000 سال عمر تھی. کہا آپ کو یاد نہیں, آپ اپنے بیٹے کو دے چکے ہیں 40 سال. کہا میں تو نہیں یاد. فنسی آدم, آدم بھول گئے. تو اللہ ان کو بھی دینے پہ قادر, ان کو بھی دینے پہ قادر ہے. دنیا سے جانے کو کسی کا دل نہیں کرتا, لیکن جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا حضرت عیسیٰ کے پاس آئی تو رو رہی ہے، میرے لیے دعا کرو، میرا ایک بیٹا 100 سال کا ہی ہو کے بیچارہ مر گیا اتنی جلدی، دوسرا 200 سال کا ہو گیا، کیونکہ پہلے عمریں بڑی طویل ہوتی تھی. اور آپ نوٹ کر کے دیکھیں فرق لائف سٹائل کا بھی تھا. آج جتنی لگژریس زندگی ہے، جتنے ہیوی کھانے ہیں، اتنی زندگی کا سپین قدم ہو گیا. کہا اچھا اتنی لمبی عمر کے باوجود رو رہی ہو، اے اماں ہمارے بعد ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ جن کی عمریں تو بہت چھوٹی ہوں گی لیکن ان کی شان بہت بڑی ہے. امت محمدیہ کی طرف اشارہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں گے اچھا صرف 60-70 سال جیئیں گے، پھر تو وہ لوگ مٹی کے گھروں میں ہی رہیں گے. کہ کیا گھر بنانے 60-70 سال کی زندگی. آج اگر وہ اماں کہیں ہوتی تو پھر دیکھتی کہ اس کی سوچ کتنی غلط تھی. تو یہ دعا کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایک پریزنٹیشن دیکھتے ہیں.